Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Na dharma chakshu ki charcha ki. Bhagwan ne ज्ञान चक्षु की चर्चा की 15वें अध्याय में, लेकिन पूरी गीता में धर्म चक्षु की भी चर्चा है, वो चर्म चक्षु की कहीं चर्चा नहीं है। लेव जी, गीता में चर्म चक्षु की कहीं चर्चा नहीं। गीता ने ये नहीं कहा कि चर्म चक्षु ठीक रखना चाहिए अर्जुन, ये नहीं कहा है। तेरे चर्म चक्षु से ही सारा गड़बड़ हो रहा है। अर्जुन ने यदि युद्ध के बीच में रथ में बैठकर चर्म चक्षु से युद्ध तैयारी के व्यक्तियों को न देखा होता तो शोक अंदर घुसता? बोलो, अर्जुन की हृदय में शोक कब घुसा? जब चर्म चक्षु से देखा, ये तो मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, सब मेरे बंधु बांधव चारों तरफ, ऐसा युद्ध करना बेकार है। तो सारा गड़बड़ किसने किया? चर्म चक्षु ने। और भगवान ने कहा क्या? ये चर्म चक्षु पर भरोसा न कर अर्जुन, तो धर्म चक्षु से देख धर्म क्या कहता है। धर्म क्या कहता है? स्वय स्वय कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नर। देख लो क्या कह रहा है धर्म। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। क्या कहता है धर्म? अर्जुन तेरा धर्म चक्षु खोल, ये चर्म चक्षु से काम न चलेगा यहां है। और केवल चर्म चक्षु से माने केवल धर्म चक्षु का उपदेश नहीं किया, धर्म चक्षु के बाद ज्ञान चक्षु भी खोल दिया। हाँ, क्या खोला? देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुयति। न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये कौन सी दृष्टि है? ये ज्ञान चक्षु। भगवान ने अर्जुन के दो चक्षु खोल दी। कौन कौन सी? धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। हाँ, धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु खोलने का परिणाम क्या हुआ? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। लेव जी, महाराज ये तो बात स्पष्ट हो गई। ये चर्म चक्षु ने तो हमको धोखे में डाल दिया। ये तो आपने बचा दिया भाई, हम तो चर्म चक्षु जो कहता है वही ठीक मानते रहे, चर्म चक्षु पर भरोसा करते रहे। लेकिन बात कुछ और है। हाँ, सारा संसार 99% व्यक्ति चर्म चक्षु पर ही भरोसा करते हैं। हाँ, धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु की तो बात ही छोड़ दो। कभी कभी ज्ञान चक्षु की तो खाली चर्चा होती है, प्रयोग नहीं होता है। होता है? हाँ, धर्म चक्षु की चर्चा भी होती है, प्रयोग भी होता है। कभी कभी एकादशी के दिन साबूदाना की खिचड़ी खा लेते हैं, प्रयोग भी होता है। हैं, धर्म चक्षु के एकादशी के दिन साबूदाने की खिचड़ी खाना ये धर्म का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है, ध्यान देना। ज्ञान का विषय तो क्या है? चाहे दाल भात खाओ, चाहे साबूदाना की खिचड़ी खाओ, खाने वाला प्राण और इंद्रियां हैं, आत्मा तो अभोक्ता है, अकर्ता है, अभोक्ता है, असंग है। देखो, इंद्रियस्य इंद्रियार्षे तु वर्तन्त इति धारयः। लेव जी, क्या कहा ज्ञान चक्षु? क्या कहता है? इंद्रिया अपने विषय में विचरण करते हैं, राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न समागच्छत तव यत्य परिपंति नो। देख लो, ज्ञान चक्षु के बाद तो क्या गजब की भूमिका आती है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई, अर्जुन के तीसरा नेत्र खुल गया। तो अब अर्जुन क्या हो गया बोलो? है, त्रिनायनम हो गया वो। हाँ, अर्जुन अब क्या हुआ? हाँ, ये त्रिनयन अब कौन हो गया? अर्जुन। हाँ, केवल शिवजी नहीं, जीव भी त्रिनयन हो सकता है। कब? तुम्हारी जो तीसरा आंख है ना, वो बंद पड़ी है, वो खुलने का कोशिश तो कर रहे हैं। खुल जाए तो भगवत इच्छा है, अर्जुन की कृपा हुई तो प्रसादान, भगवान के प्रसाद से, कृपा से अर्जुन का तीसरा नेत्र खुल गया। और आपके भी इसी तरह भगवान का कृपा, गुरु के कृपा, शास्त्र के कृपा, आत्म कृपा, चारों कृपा एक साथ हो जाए तो आपके भी तीन नेत्र, तीसरा नेत्र खुल जाए, ज्ञान चक्षु, और आप त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनयनम, आप फिर जीव भाव से सर्वथा हटकर आप क्या कहने, अभी क्या कहते हो? जीवो हम। तीसरा नेत्र खुलेगा तो क्या बोलोगे? शिवो हम है, चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम। कब कहोगे? ये कहना तो अभी भी कह रहे हो, कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। जो कह रहे हो वो जी रहे हो कि नहीं? शिव के रूप में जीने का अवस्था तो वो तीसरा नेत्र खुलेगा तब, क्योंकि शिव जी रहे हैं। हाँ, आ शुरू किया था शिवानंद लहरी और पहुंच गए ब्रह्मानंद लहरी में। हैं, कहां पहुंच गए? शुरू किया था कहां? शिवानंद लहरी और पहुंच गए कहां? ब्रह्मानंद लहरी। एक ही चीज है भैया, हाँ एक ही चीज है। ये त्रिनयनम, तीन नेत्र की बात करना बहुत जरूरी था। त्रयी वेद्यम हृद्यम त्रिपुरहरमाद्यम त्रिनयनम जटाभारोदारम चलदुग्रगारम उरगहारम मृगधरम महादेवम देवम मयि सदय भावम पशुपतिम चिदालंबम सांबम शिवमति विडंबम हृदि भजे। भगवान शिव की स्तुति करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, त्रिनयनम, हे त्रिनयनम, तीन नेत्र वाले, मुझे भी तीन नेत्र वाला होना है। आप केवल तीन नेत्र वाले हो, मुझे भी तीन नेत्र वाला होना है। वो आपके कृपा से ही होगा भाई, मेरा तीसरा नेत्र भी आपके ही कृपा से। जिसका तीसरा नेत्र खुला होगा वही दूसरे का तीसरा नेत्र खोल सकेगा, जिसका तीसरा नेत्र बंद होगा तो दूसरे का तीसरा नेत्र खोल पाएगा? बोलो। जिसका चर्म चक्षु बंद होगा वह दूसरे के चर्म चक्षु का ऑपरेशन कर पाएगा? बोलो। कुलीन कोठारी के अपनी आंख ठीक होगी तब ना तुम्हारी आंख ठीक करेगा, है? यदि उसकी आंख बिगड़ गई, अंधा हो गया वो, तो क्या तुम्हारे आंख का ऑपरेशन करेगा? फिर भी चर्म चक्षु जिसके खुली है वो चर्म चक्षु खोलेगा, धर्म चक्षु जिसकी खुली है वही धर्म चक्षु खोलेगा, ज्ञान चक्षु जिसकी खुली हुई है वही दूसरे के ज्ञान चक्षु खोलेगा। क्योंकि शिव के ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं इसलिए वही समर्थ हैं हमारे ज्ञान चक्षु खोलने में। हे भगवान, हमारे ज्ञान चक्षु खोल दीजिए ताकि हम भी त्रिनयन त्रिनेत्रम बन जाएं। जटाभारोदारम, कहते हैं भगवान शिव पहले बहुत चंचल थे, बहुत चंचल। एक कहावत है, वो बंदर को भांग पिला दो तो क्या अवस्था होगी उसकी, है? बंदर को यदि भांग पिला दो और उसको कहो कि तू कुर्सी में बैठ, बैठेगा? एक तो बिना भांग पिए ही बंदर इतना चंचल है, उसमें भी भांग पी ले वे, बोलो क्या वो स्थिर होकर बैठ पाएगा? वो कहते भगवान शिव बहुत चंचल थे क्योंकि पहले खूब भांग पीते थे वो, है ना? भांग पीते थे तो बहुत चंचल थे। सब लोग बहुत समझाए बेचारे, भगवान आप तो परमात्मा है, सारे जगत आपको मानते हैं, इतने उतावले मत बनो, इतने चंचल मत बनो, जरा गंभीर होकर बैठो। अब क्या करें, वो आदत से मजबूर, है बहुत चंचल। सब लोगों ने विचार किया कि इनकी चंचलता को कैसे रोके, कहने से तो मानने वाले है ही नहीं। तो सब लोगों ने भगवान को कहा, शिव जी को, हे शिव जी आप जटा बढ़ाओ, खूब सिर में जटा बनाओ, तपस्या करो और जटा बनाओ। तब भगवान शिव ने जटा बढ़ाना शुरू किया, इतना जटा इतना बढ़ गया। तो भगवान शिव की जटा का उल्लेख किया किसने, रावण ने, शिवतांडव स्तोत्र में, जटा कटाह संभ्रमम। हे शिव आपके सिर का जो जटा है ना वो कैसी है, आकाश मान लो एक कड़ाही है, हाँ? जटा कटाह संभ्रमम, आकाश कैसी है इस समय आपको, आकाश कैसा दिख रहा है, उल्टा करके रखे हुए बड़ा कड़ाही जैसा लग रहा है कि नहीं है। बड़े बड़े आश्रमों में भंडारा होता है ना, समष्टि भंडारा, वो पकाने के लिए कड़ा होते, कड़ाई क्या होता है, कड़ा होता है, बड़े बड़े लोहे के कड़ाई, जहां पांच पांच दस दस हजार के लिए भोजन बनता है और खीर पकती है, है? लोहे के कड़ाई, तो मांजने के बाद उसको उल्टा करके रखते हैं। क्यों उल्टा करते हैं मांजने के बाद पता है, सीधा करके रखोगे तो पानी रहेगा तो उसमें जंग लग जाएगा, तो उल्टा कर देने से पानी नहीं रहेगा तो जंग नहीं लगेगा, मांजने के बाद चमक बनी रहेगी, इसके लिए उल्टा कर देते हैं। हाँ, इसी तरह आप ऊपर से देखोगे कैसा लगता है आकाश, है? किसी ने आकाश को, कड़ाई को उल्टा करके रख दिया। ये आकाश जो है ना, देवता लोगों को हलवा पका के खाने के लिए कड़ाई है, हाँ? और हमने देखा आश्रमों में वो बड़ा कड़ाई उल्टा करके रखा, तो कड़ाई के नीचे कभी भी सफाई न करे कर्मचारी तो गंदगी रह गया कड़ाई के नीचे, क्योंकि एक आदमी तो इलाज जुला पाएगा नहीं, तो जहां गंदगी आ गई तो मच्छर बहुत हो गए, और वो सारे मच्छर वो कड़ाई के अंदर ही उड़ते थे। ऐसे कभी जाके देखो, उड़ते थे कहां, कड़ाई के अंदर उड़ते थे। इसी तरह आप लोग भी देवताओं के कड़ाई के अंदर उड़ रहे हो। देवताओं की कड़ाई क्या है, आकाश, आम जीव क्या है, उस आकाश के नीचे वो कड़ाई के अंदर घूम रहे। और रावण ने क्या कहा है, देखो, असंभ्रमम, जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं ना छोटी सी कड़ाई में, हलवा अच्छी तरह सिक गया और पक गया तब वो हलवा कड़ाई को छोड़ देता है, कड़ाई से चिपकता नहीं है, छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद तुम चलाओगे तो वो कड़ाई में घूमता रहता है, पूरा हलवा पूरा एक पूरा घूमेगा, वो जितना चलाओगे घूमता ही रहेगा वो। रावण ने उस दृश्य का स्मरण किया, हे शिव आपकी जो जटा है आकाश रूपी कड़ाई के अंदर इस तरह घूम रही है जैसे कि हलवा घूमता है, संभ्रमम, हाँ, जटा कटाह संभ्रमम, हाँ? तो इसीलिए जटा, और वो जटा भगवान शिव की इतनी बड़ी हो गई कि उनको संभाल संभाल के बांधे रखे, हाँ? तो उसके वजन से भगवान शिव की चंचलता हट गई, तब वो गंभीर हो गए, क्योंकि चंचल करेंगे तो कहीं जटा इधर उधर बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो सिर सीधा रखना पड़ेगा, हाँ? तब फिर तब गंभीर होने लग गए भगवान शिव, तब फिर कैलाश में बैठे गंभीर, फिर उनकी चंचलता चली गई। वही कह रहे हैं यहां, जटा भारोदारम चल दुरगहारम मृगधरम चलत उरग, चलत माने चंचल, उरग माने सर्प, सर्प का नाम है उरग, उर का मतलब होता है छाती और पेट, उर का अर्थ होता है छाती या पेट, और छाती या पेट से जो चले तो क्या हुआ, चलत उरग, चलत उरग, चलत का अर्थ हो गया अति चंचल, इसलिए साधु के भाषा में कहा गया है, तीन चार सकार एक ही स्वभाव के हैं। चार सकार साधु, सरिता, सर्प और शेर, ये चार चीज एक जगह कभी भी बैठे नहीं रह सकते। साधु भी चरैवेति, इसीलिए साधु के नाम के आगे परिब्राजकाचार्य लिखते हैं, घूमने में मास्टर। आचार्य माने, आचार्य माने क्या, मास्टर। तुम लोग मास्टर कहते हो, हम लोग आचार्य कहते हैं। साधु क्या है, चलने में मास्टर। साधु जितना चलता है तुम लोग क्या चलोगे भाई, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। परिब्राजक चारों तरफ ब्रजति गच्छति इति परिब्राट, परि माने चारों तरफ, ब्रजति गच्छति परिब्राट, परिब्राट में आचार्य मास्टर परिब्राजकाचार्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिब्राजकाचार्य। लेव जी, साधु एक जगह कभी नहीं बैठता है, हाँ। और दूसरी बात, सरिता नदी, सरिता का अर्थ होता है नदी। सरिता सतत बहती ही रहती है, स्थिर होकर नहीं रहती है, चलायमान गतिशील। और इसी प्रकार के सर्प कभी भी एक जगह नहीं बैठेगा। आज यहां देखा तो कल खोजने जाओ वहां नहीं मिलने वाला, कहां का कहां पहुंच गया वो। और शेर भी एक जगह नहीं बैठता है, इसीलिए कहा चलित, चलत उरग, अति चंचल जो सर्प है वह, उसको भगवान ने क्या बनाया, हारम। चलग उरग हारम, चलत उरग हारम, उसको आगो। इसकी व्याख्या तो हमने कल कर दी थी, सर्प को भगवान शिव ने हार क्यों बनाया, ये तो हमने कल व्याख्या कर दी थी, है? सब लोगों ने तिरस्कार किया, रोने लग गए, महाराज आपके कहने से हमने पृथ्वी में गिरे हुए विष का पान किया, चाट लिया, पृथ्वी को शोधन कर दिया। अब उसका परिणाम यह कि जो भी हमको तिरस्कार कर रहा है, डंडा मार रहा है, भगा रहा है, हम किसके आश्रय में रहें। भगवान ने कहा कि चिंतित, क्योंकि तू मेरा आज्ञाकारी है, इसलिए ले आ मेरे हृदय में बैठ, जटा में बैठ जा। ये काम आ गया ना, महिलाएं अपने केस बांधने के लिए एक रबड़ बैंड प्रयोग करती है ना, भगवान शिव का रबड़ बैंड, वाह क्या बढ़िया, जटा इतना बड़ा था, जब भी इधर उधर चले तो वो जटा नीचे गिर जाए, हैरान हो गए। अब क्यों साधारण रबड़ बैंड से बंधे, वो पकड़ लिया सर्प, बांध लिया, अब तू हल हिलना नहीं। ले जी, सर्प उसको बांध के बैठा है। मृगधरम, शिव का नाम है भी मृगधरम। भगवान शिव के चार हाथ, चतुर्भुज मूर्ति देखोगे, चतुर्भुज, उसमें एक हाथ में मृग है, मृग हरण हिरण रखा हुआ है, मृगों को ऐसे पकड़ रखा है, उसके दो पांव ऊपर की तरफ हैं, दो पांव दो उंगलियों से दबा रखा है भगवान शिव ने, हां ये उनकी विशेषता है। ये एक प्रतीक है, मृग असाद बहुत ही चंचल प्राणी है, जंगल में मृग अति चंचल प्राणी है, और तुम्हारे अंदर मन अति चंचल है। मृग के चार पांव हैं तो तुम्हारे भी मन के भी चार पांव हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पांव हैं, इन्हीं चार पांव से उछलता है। ज्ञानी लोग का मन धर्म और मोक्ष दो पांव का प्रयोग करते हैं ज्यादा, अज्ञानियों का अर्थ और काम का प्रयोग होता है, तो मन के चार पांव हैं। लेकिन वो अति चंचल प्रतीक, मन के जो चंचलता, वो हिरण के साथ प्रतीक बनाकर भगवान शिव ने वो रखा है, तो हिरण को पकड़ के उसके दो पांव को, पीछे के दो पांव को पकड़ के रखा है। पीछे के दो पांव को पकड़ा का मतलब होता है मन को अर्थ और काम में प्रवृत्त होना न देना। मन के चार प्रकार के वृत्तियों में से अर्थ काम जीवात्मा के लिए सर्वथा घातक होने के कारण जीव का कल्याण तभी संभव है, सबसे पहले अर्थ और काम वृत्ति पर नियंत्रण करे और धर्म और मोक्ष वृत्ति को प्रयोग करे। ये प्रतीक है वो। इस अपरोक्ष माने शिवानंद लहरी पर श्रद्धेय हमारे गुरु महाराज ने प्रवचन किया है, चतुर्मास में दिल्ली में प्रवचन किया था, महाराज जी ने यही अर्थ किया है, वो प्रतीक है। इसलिए मृगधरम, भगवान शिव का नाम तब से मृगधर हो गया। महादेवम देवम, देव शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, देवतना देव, जो हमेशा प्रकाश स्वरूप है वही देव है। महादेवम, देवताओं में वो देव होने के कारण उनका नाम महादेव हुआ, और देवम प्रकाश स्वरूप है। मयि सदय भावम पशुपतिम, मयि मेरे प्रति, हे भगवान सदय भाव आप में होनी चाहिए, सदय भाव मेरे प्रति दया का भाव आपके हृदय में जरूर होनी चाहिए। यदि आप ही मेरे प्रति दया नहीं करेंगे तो और कौन दया करेगा महाराज? क्यों? आप पशुपति हैं और मैं पशु हूं। आपका नाम पशुपति क्यों हुआ? क्योंकि हम सब पशुओं की रक्षा करने वाले होने के कारण आपका नाम पशुपति हुआ है, और आपका पशुपति नाम तभी सार्थक होगा मुझ पशु के प्रति आप दया करें और मुझ पशु की आप रक्षा करें। रक्षा दो प्रकार से होता है, एक भरण पोषण से रक्षा करना होता है और दूसरा विजातीय शत्रु पक्ष से, नाशक तत्वों से रक्षा करना होता है। केवल नाशक तत्वों से रक्षा कर लिया और भरण पोषण नहीं की तो वो रक्षा का कोई मतलब नहीं। एक ने बिल्ली पाली थी तो कुत्ते के साथ उसके दुश्मनी हो गई, किसकी? बिल्ली की। कुत्ता उसको देखना ना चाहे, मौका मिले तो उसको पकड़ के खाने की चेष्टा करे, तो उसने विचार किया, बेचारा ये कुत्ता खा डालेगा इसके, इसलिए क्या करना चाहिए? तो एक टोकरी में बंद करके रख दिया, पिंजड़े में बंद कर दिया। किसको? बिल्ली को। अब रक्षा हो गई कि नहीं बिल्ली की? बंद करके चला गया, अब खाने नहीं दिया है तो बिल्ली की रक्षा हुई कि नहीं? अब कुत्ता मार पाएगा उस बिल्ली को है, क्योंकि उसको बंद कर दिया टोकरी से। कुत्ता उसको मार पाएगा? अब बिल्ली की रक्षा हो गई कि नहीं? अरे इस प्रकार के रक्षा से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि खाना देता और खाना भी नहीं दिया तो क्या करेगा? और कह रहा कि मैंने बिल्ली की रक्षा कर दी, फिर खाने भी दिया नहीं दिया। दो दिन के बाद तो देखा बिल्ली मर गई है। सब लोगों ने कहा कि क्या हुआ? बोले बिल्ली मर गई। तूने तो कहा था बिल्ली की रक्षा कर दी कुत्ते से। बोले हाँ कुत्ते से तो रक्षा कर दी, लेकिन खाने नहीं दिया था, वो कुत्ते के रक्षा करने का प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? हे शिवा, ऐसा ना हो कि खाने भी दो यमराज से भी रक्षा करो है, और यमराज से रक्षा तो करो, इधर खाने नहीं दोगे फिर यमराज से रक्षा करने का प्रयोजन क्या हुआ है? देखो सदय भावम पशुपति चिदालंबम सांबम शिवमति विडंबम हृदि भजे। शिव जी के ही सब विशेषण है, चित आलंबन चैतन्य ही उनका स्वरूप है, सांबम अंबा सहित पार्वती के सहित शक्ति के सहित, शिवम कल्याण स्वरूपम अति विडंबम, विडंबा विडंब का अर्थ होता है संसार, और संसार का नाम विडंब, और संसार का अतिक्रमण करके आप रहते हो इसलिए अति विडंबम, अति का अर्थ अतिक्रम अतिक्रांतम, विडंबम संसारम जन्म मृत्यु से भरा हुआ, राग द्वेष से भरा हुआ यह जो संसार है, इस संसार से अतिक्रम यानी निकले हुए आपका स्वरूप है, ऐसे हे शिवा हृदय भजे, ऐसे भगवान शिव का मैं हमेशा हृदय में भजन करता हूं, स्मरण करता हूं, यानी मैं हमेशा उनकी सेवा करता हूं। भजन का अर्थ सेवा भी होता है, भज सेवायाम, धातु से भजन बनता है। तो आगे के श्लोक कल देखेंगे भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।